ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಹಾವತನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರದ್ವಿಜೇ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಚಿತ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿ ಶರಣಂ ಕೃಪಾಮಯಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣ ಯಂ ಪ್ರಪ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾ ದುಭಾವೋ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮೇ ತಯಾ ಚಿನೇದೋ ತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ಜೀವಾಂ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಧೇ ತಂ ನಯಮಾಂ ತ್ರುಪಿ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕಾ ಫಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ವೇದೋ ಕೆ ಬಹುತ್ ಸೇ ಭಾಗ जिनमें एक ब्राह्मण भाग और दूसरा वेदांत कहलाता है। वेदों का अंत अर्थात वेदांत अर्थात सार भाग को वेदांत कहते हैं। उनके ऊपर में व्यास जी ने 550 सूत्र लिखे हैं। सारे वेदों का सामंजस्य उन्होंने किया और वेदांत सूत्र का अप्रतिम भाष्य है श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत प्रमाण अमल है, किंतु हम लोगों को कुछ कुछ साधकों को भजन करने वालों को प्रचार की दृष्टि से वेदांत क्या है, इसके मुख्य मुख्य सूत्र क्या हैं, इनका तात्पर्य क्या है, उसे जानना आवश्यक है। वेदांत के अंततः प्रचार की दृष्टि से इसको जानने से, आराधना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भागवत ठीक है, किंतु भागवत का वेदांत से संबंध है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा जानना उचित है। आप लोग बतलाइए, प्रधान प्रधान लोग हैं, मैं वेदांत के चार अंततः प्रारंभिक सूत्र जो है उनके ऊपर में समस्त वेदांत टीका, ये चारों सूत्रों को पहले याद करें और इसका तात्पर्य बतलाएं। वो सूत्र क्या है बोलो तो, और तीसरा हो गया गपड़ी चुपड़ी चापड़ी, ये सब करने में बहुत बार दार्शनिक तत्व में आओ, उसे स्त्रियों को साधारण स्त्रियों को तुम चकनी चुपड़ी कह करके ले लेगा, विद्वत पुरुषों में इसके लिए ये सब की जरूरत है, विचार प्रधान होना चाहिए। बोलो तो कौन चार चे नवीन जी बतलाए, पंडित तुम बोलो जन्मादर्श जो क्या बोला, हाँ ठीक पंडित कोई बोले तो इसमें से तुम जानता है कमलापति है, तुम लोगों का लाल कपड़ा हम ले लेंगे, जो जो नहीं बदलाएगा उसका लाल कपड़ा निकाल लेंगे और जो जो सफेद कपड़े हैं नहीं बदलाएंगे उनकी टीकी काट लेंगे। तुम बदलाओ तो सत्संग छोड़ करके भागे, बदला 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 है शुभानंद नहीं है तो उसको कलाचंद जी जन्मादश से जत अच्छा दो तीन बस वही तक। अरे भाई थोड़ा सा तो परिश्रम करो, साधन भजन करो, इसको थोड़ा सा तैयार करो, कल हम पूछेंगे। पहला है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्मादश जगह, तीसरा है शास्त्र जोनी, और चौथा है तत्व समन्वय। ये चार हैं, इन चारों को याद करके कल आना। और थोड़ा सा संक्षेप में इसका क्या तात्पर्य है ये पूरी दे करके आए, इनका जरूरत है, विशेष विशेष जो प्रचारक हैं इनको जानना जरूरत है, और नहीं तो समझ में कुछ आएगा, कोई कुछ पूछ देगा तो आप लोग बस दांत बाहर कर करके बस कर, थोड़ा सा जानना चाहिए। कहानी से गल्प से विद्वत समाज में कहानी से गल्प से केवल नहीं, कल याद करके आएंगे तब थोड़ा सा इसके संबंध में हम बतलाएंगे। तो कल हमने ये बतलाया, एक तो है भजन राज्य में हरिनाम इत्यादि करो निर्बंध के साथ, यदि भजन में उन्नति चाहते हो, भजन करना चाहते हो। प्रभु कहे कही नाम यही महामंत्र यहां जपे गिया सबे करिया निर्बंध के साथ। ये निर्बंध को हम दो तीन दिन पहले की चार दिन पहले बतलाया था, तुलसी काष्ठ के माला पर गोपुच्छ तुलसी हाथ न कप ऐसे ऐसे, और उसमें झांक करके ऐसा निकाल करके न देखे, अव्यग्र चित्त से, अव्यग्र मैंने क्या चंचल चित्त न रहे, शांत प्रशांत होकर। और चित्त लगाकर प्रार्थना मूलक रूप से हरिनाम किया। निर्बंध में पांच चीजें बतलाया था, पांच चीजों में मंत्र का अर्थ, मंत्र का इष्ट देव और उससे संबंध, प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, ये पांच उसके अंग हैं। इन पांचों अंगों को अच्छी तरह से समझकर और तब हरिनाम करेगा निर्बंध के साथ में, एक लाख से कम नहीं हरिनाम करेगा। इतना नहीं होता तो 75 तक के लिए रखो, उससे भी नहीं होता 50 तक निश्चित रखो, उससे कम में नहीं, और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाओ। एक लाख जो हरिनाम नहीं करता प्रभु उसके हाथ से हुआ हुआ कोई चीज नहीं लेता, इस चीज को समझ लो। 4 लाख कोई पुजारी हो और 1 लाख कोई सन्यासी हो, महात्मा हो, भजन करने वाले हो, नहीं लेंगे, और वो भी समर्पित चित्त होकर के, और इन पांचों से युक्त होकर के। क्या बतलाया, मंत्र का इष्ट देवता, उसके साथ में हमारा संबंध जिसको कहते हैं न्यास, इसके बाद में प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन, इन चीजों के साथ में हम यदि मंत्र का जप करेंगे, हरिनाम करेंगे और वो भी निश्चित संख्या में, और निर्बंध में भी ये आएगा अनुवृत्ति, इति अच्युतांध्रिम भजतो अनुवृत्त्या, अनुवृत्ति के साथ। अनुवृत्ति का अर्थ मैंने बतलाया, अभी पूछेंगे तो कोई बतलाएगा कि कल ही बतलाए। अनुवृत्ति अनु निरंतर, वृत्ति जो हमारे भजन राज्य के आदर्श हैं, उनकी वृत्तियों को एक जीवन निर्वाह किस वृत्ति से करते थे और किस वृत्ति को अवलंबन करके भगवान का भजन करते थे। वो वृत्तियां भी भजन की वृत्तियां दो हैं, कृष्णम स्मरण और कृष्ण के जन्म स्मरण, कृष्ण के जो जन है। उन दोनों का किस रूप में पद्धति से हम करें, इसमें रूप रघुनाथ जी की अनुवृत्ति को अवलंबन करना पड़ेगा। क्या उनका विचार था, कैसे करते थे? हरिदास ठाकुर जी हैं, विशेष करके रूप रघुनाथ जी की वृत्ति, उन वृत्तियों को अवलंबन करके जब करेंगे उस रूप में भाई, तब ये भजन साधन आरंभ हुआ, भजन नहीं साधन आरंभ हुआ। और भजन होगा साधन जब परिपक्व हो जाएगा, भाव की अवस्था आएगी तो भजन होगा, साधन ही भजन नहीं है। बहुत उन्नत चीज है, हम एक ही जैसे प्रयोग कर लेते हैं। साधन और भजन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भजन के प्राथमिक अवस्था को साधन करते हैं, इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्रीत करने के लिए। जब स्वरूप सिद्धा भक्ति का हम अनुशीलन इंद्रियों के द्वारा करते हैं तब उसको साधन करते हैं, वो भी भाव के लिए, भाव की सिद्धि के लिए। शास्त्रों में उल्लिखित विधियों का हम इंद्रियों के माध्यम से चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा और पाद पाई उपस्थ इत्यादि ये 10 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जब हम उसको करते हैं, जैसे जड़ जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम उच्चरित नहीं होता, लाख चेष्टा करो नहीं होगा। अतः कृष्णामादि न भवेत ग्राह्य मेन्द्रिय सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत। भगवान का रूप अभी हम जो देख रहे हैं आंखों से नहीं दिखेगा, जो देख रहे हैं ये काठ पत्थर देख रहे हैं, हाथ के द्वारा भगवान को पकड़ नहीं सकते, जीवा के द्वारा भगवान का अप्राकृत नाम नहीं होता, प्राकृत मन के द्वारा भगवान का नाम का चिंतन नहीं होता। सेवा की वृत्ति होगी वो भी वैष्णव के अनुगत्य में निष्कपट, तब ये चीजें होंगी, चाहे लाख जत्न करो नहीं होगी अपने आप। अभी जो हम हरिनाम कर रहे हैं इसमें परिश्रम लगता है, नींद लगती है, कुछ देर के बाद में थक जाएंगे बैठ के, और अपने आप जिह्वा पर हरिनाम उदित होगा, इंद्रियों के ऊपर में अपराकृत वो सब चीजें उदित होंगी, तो उसको भगवान की भावमयी सेवा करते हैं तब तो वो हो सकता है। इसलिए वैष्णव के गुरु के अनुगत होकर के उन चरणों में आत्मसमर्पण करके ये सब। तो हमने बताया साधन, जब प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो होता है तो इसको कहते हैं साधन, किंतु वो भी वो भाव के उद्देश्य से स्वरूप सिद्धा भक्ति का यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इत्यादि अथवा साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति श्रद्धा स्मरण यदि ये करें तो ये साधन होगा। साधन जब ही साधन अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति जहां भाव उत्पन्न हुआ इसके बाद में या रति, उस समय उसका नाम साधन नहीं रह करके भाव भक्ति हो जाएगा, साधन भक्ति नाम नहीं रहेगा, भाव भक्ति हो जाएगा। और वही भाव भक्ति में स्वरूप सिद्धा स्वरूप सिद्ध हो जाएगा या इसके बाद में वस्तु सिद्धि होगी, उस समय में भाव भक्ति भी नहीं रह करके वो प्रेमा भक्ति हो जाएगा, बल्कि प्रेमा भक्ति अब नाम ही नहीं रहेगा, प्रेम सेवा हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से समझ करके कृष्ण का स्मरण हमारे भक्ति में साधन में उतना सहायक नहीं है जितना उनके अनुगत जो उनकी सेवा करते हैं उनका चिंतन। भगवान की अपेक्षा, महाप्रभु के चरित्र की अपेक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि गोसाई लोगों का जीवन चरित्र हमारे लिए अधिक लगता है। क्यों? उन्होंने कैसे भगवान को पाया अपने जीवन में, इसको जान करके हम आगे बढ़ सकते। और केवल चैतन्य महाप्रभु का चिंतन किया वो पूरा नहीं हुआ, और इनके जीवन चरित्र का अध्ययन से महाप्रभु का भी हो जाएगा, इनका भी, गोपियों का या ब्रजवासियों की भक्ति का चिंतन करने से वो कृष्ण का भी उसमें आ जाएगा और इनका भी आ जाएगा, गोपियों का भी। इसलिए कृष्ण की स्मरण की अपेक्षा हमारे गोस्वामियों ने जो गोपियों का अनुगत्य किया है ये अनुवृत्ति है। अभी हम जो अनुवृत्ति करेंगे कैसे करेंगे, वो नहीं बनेंगे। उनके भावों का चिंतन, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना, रोना, यदि उसके लिए भूख जैसे खूब लगी है, जैसे आदमी बिलबिल आता है, वैसे इस प्रेम की भूख हो, लोभ हो, तब तब फिर कुछ इसके लिए ये भूख जगाने की जरूरत है, कैसे जगेगा। इसलिए इन चीजों को समझ करके भाई जीवन नष्ट मत करो, कभी मृत्यु आ जाएगी कोई ठीक नहीं, बहुत जल्दी इसी में लगो और सब चीजों को छोड़ो, आगे बढ़ो। इसलिए शुद्ध वैष्णवों की अनुगत्य की जरूरत है। एक आदमी कुछ भी नहीं जानता है, हरिनाम गुरु जी ने दे दिया, वो मान लिया कि गुरु को और वैष्णव को सबको छोड़ करके चला गया, एकदम गोवर्धन की किसी गुहा में बैठ गया और नाम कर रहा, क्या होगा? कुछ दिनों के बाद में कहीं फिर लौट जाएगा और फिर संसार की बातें करेगा। इसलिए भजन परायण शुद्ध तत्व जानने वाले वैष्णव के अनुगत्य में थोड़ा भी भजन करेंगे तो हम उसके तरफ में जाएंगे, अनेक तो उल्टी दिशा में चलेंगे। इस चीज को समझो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शक्षात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चरणम लखना क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्य अधेत मुक्त। ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है, इसको कहते हैं साक्षात कृष्ण या कृष्ण के परिकरों संबंधी ये जो चीजें हैं ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है। आम का बगीचा लगाना, अस्पताल बनाना या और सब चीजें हैं, बगीचा लगाना और सब जितनी चीजें हैं, ये सर्व सिद्धा भक्ति नहीं, ये बल्कि क्या है, क्या कहते हैं, आरोप सिद्धा। और वैराग्य, त्याग और जितने प्रकार के गुण हैं भक्ति को छोड़ करके, वो सब गुण हैं संग सिद्धा। यदि भक्ति के साथ में है तब तो वो ठीक है, अन्यथा उसका कोई भी नहीं। अधिकांश लोग इन्हीं दोनों में बह जाते हैं, सर्व सिद्धा भक्ति में नहीं आते, क्योंकि कर्मी होते हैं ना, इसलिए कर्म में उनका मन लग जाता है। ठाकुर जी का अर्चन करेंगे, गोवर्धन के परिक्रमा 10 बार कर देंगे एक राउंड में, दिन रात मिला करके 5-4 कर लेंगे, थक जाएंगे तभी करते रहेंगे, और कहेंगे जो आपने बहादुरी मारेंगे ये 10 बार कर लिया। और यहाँ पर बैठ करके 50,000 एक बैठक में चित्त लगा करके करो, या तो सो जाएगा या वहां से उठ करके चला जाएगा, नहीं हो सकता, ये उससे लाख गुना कठिन है। इसकी जरूरत है स्वरूप सिद्धा भक्ति की। इसलिए ये श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन इत्यादि जो नवधा भक्ति है, ये भी पुंसा अर्पिता, यदि साधकों के द्वारा, साधक पुरुषों के द्वारा अर्पिता विष्णु, विष्णु के प्रति यदि अर्पित है, कैसे, अंत में तो आत्मनिवेदन है, तो यहां कहते हैं कि पहले ही गुरु उनके प्रति, विष्णु के प्रति, अर्थात आश्रय विष्णु, विषय विष्णु, उसमें आश्रय विष्णु गुरुदेव वैष्णव के प्रति ये अर्पित करके और भक्ति यदि करेगा तो ये स्वरूप सिद्धा भक्ति होगी, अन्यथा ये भी स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं, उसे भी च्युत हो जाए। एक आदमी मान लिया कि कहीं से सुन लिया, जे नाम करने से भगवान की प्राप्ति होती है, और दिन भर रात भर अकेले गोवर्धन में बैठ करके राधा कुंड के तट पर वो हरिनाम करता, क्या होगा? होगा क्या? उससे अधिक अधिक ये होगा कि सुकृति कुछ हो करके शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। उस नाम का फल प्रेम नहीं होगा, नहीं होगा। लाख तुम लोग चेष्टा करो, या तो साधु संग देंगे या कुछ सुकृति हो जाएगी, मोक्ष दे देंगे, यही सब दे देंगे, प्रेम नहीं देंगे। इसलिए पहले गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर विष्णु भक्ति चेन वाला खाना। ये नौ प्रकार की जो भक्ति है, क्रियेतर यदि की जाती है तो भगवती अद्धा तन्मन्याधीत मुक्तमा, संपूर्ण रूप से यदि भगवान के देश में लगाया जाए तो मैं समझता हूं कि यही शिक्षाओं में उत्तम शिक्षा है। प्रहलाद महाराज जी बतला रहे, इस सबको हमको अनुशीलन करना चाहिए। अहम हरे तो बाद दासानुदासु भविताश्मु यह मनस्मरे अशुपते गुणान गणित वाक कर्म करो तुका। ये वृत्तासुर का प्रसंग है। चित्रकेतु महाराज जी वृत्तासुर के रूप में अभिशप्त होकर आए हैं, किंतु यह बात ठीक नहीं है। पूर्ण रूप से जय विजय जी अभिशप्त होकर के नहीं आए थे, पहली बात तो ये। प्रभु के मन को जान करके उनके प्रतीक को विधान करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जानबूझ करके अभिसंपात जैसा चीज ग्रहण किया था, इस जगत में आए थे। जिस समय यहां आए तो बैकुंठ में जय विजय थे कि नहीं? उस समय भी थे, इसलिए अभिशप्त होकर के नहीं, जगत की शिक्षा के लिए, प्रभु के साथ में कुछ विनोद करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो आए। 50 रूप धारण कर सकते हैं, उधर जगाई मधाई भी हो सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं वित्तासुर असुर के रूप में होकर के, असुर हैं। वित्तासुर कौन था? चित्रकेतु। हाँ, जय विजय उसके लिए। तो चित्रकेतु महाराज जी थे, मुक्त पुरुष थे, भगवान के परिकर थे, वे बद्ध होकर के नहीं आए। तो वित्तासुर के रूप में, असुर के रूप में भी आए। असुर किसको कहते हैं? भगवान का विरोधी यदि कोई हो तो उसको असुर कहते हैं। उस रूप में आने पर भी भगवान के विरोधी नहीं थे। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही थी, अहं हरे तौ पादयी कमूल दासानुदासु भविताश्म भूय मनस्मरे अशुपते गुणानंग गणित वा कर्म करो तुकाय। अहं हरे, हे हरे, आपके जो पाद पाद एक मूलम, आपके चरणों की प्राप्ति में जो मूल है, भगवान के चरण कैसे मिलते हैं? बिना भक्तों की कृपा के नहीं मिले। भगवान कहीं भी ऐसे स्वतंत्र रूप में अपने को नहीं दे सकते, इसलिए उनके जो मूल है, उनके दासा दासों के दासों का दास का दास भविता मैं होना चाहता हूं, अभी या भविष्य में। प्रभु हमारा मन अशुपते प्राणनाथ जो कृष्ण है उनका स्मरण करूं, मेरी वाणी सब समय उन्हीं का गुणानुवाद कीर्तन करे और मन सब समय उन्हीं का चिंतन करे। तीन ही चीज हम लोगों के लिए है, तन मन वचन। तन से हाथ पैर इत्यादि है, उनकी सेवा करूं, मन से उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करूं और वाणी से उनका गुणानुवाद करूं, और कुछ न करूं। हम लोगों का अधिकांश समय दूसरों के दुर्गुण भी बतलाने में लग जाते हैं, अपना दुर्गुण तो देखते हैं, दूसरों का गुण वर्णन करने में लगता तो भी एक होता। यदि गुण वर्णन करना है तो भगवान का गुणानुवाद करो, भक्तों का गुणानुवाद करो। अंग का शरीर का ये फल है, भक्तों के चरणों का स्पर्श, अंगों की स्पर्श, ये अंगों का फल। और मन का फल है उनका चिंतन करना, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया। यदि भक्ति चाहते हैं तो ऐसा ही संपूर्ण रूप से लगाना। छिन्नवत तव नित्य दास, गले बांधी मायापास, संसारे पाइनी नाना क्लेश। सर्वपता में भगवान का दास था, दास हूं सर्वपता, किंतु किसी दुर्दैव ने हमें माया के गले में बांध दिया, संसार पाइनू नानक, और इस संसार में जन्म में पाकर के नाना प्रकार का कष्ट पा रहा। एवे पुनः करी आश, इच्छा तो दासे दास, भजी पाई तो भक्ति लेश। आपके भक्तों के भक्तों का भक्तों का सेवा कर, उनकी प्रसन्नता कर, अंत में भक्ति का लेश भी हमारे हृदय में आ जाए। प्राणेश्वर तब गुण सम्यक स्मरुक स्मरुक मन पुनः पुनः, मन सबसा आपके गुणों का स्मरण करे। तव नाम जीवा करु गान, आपके नाम का सब समय जीवा गान करे, और दोनों हाथ भगवान के लिए सेवा के लिए कार्य करें। करिया लभो को शर्म, शर्म माने मंगल, मंगल माने क्या, मंगल कल्याण, कल्याण प्राप्त। भगवान की सेवा में शुद्ध प्रेमा भक्ति का उदय हो, ये कल्याण शब्द इस चीज को प्राप्त कर सके। तो पदे सौंपी नूर प्राण, मैंने अपने प्राण को आपके चरणों में सौंप दिया, कहने के लिए नहीं यथार्थ में करने के लिए। जीव वस्तु तत्व भोग्य तत्व, जीव भोग्य तत्व है, अभी भोक्ता बना हुआ है, कर्ता बना हुआ है, मैं मालिक हूं, मैं भोग करने वाला। इसलिए भजते भजते आनंदमयी राधा कंकर जी आशा प्रबल। यदि जीव शुद्ध भक्तों के गुरु के अनुगत्य में भजन करे शुद्ध रूप में, तो करते 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 राधा जी का कंकर जी की आशा प्रबल होती, वो भी रसिक भक्तों के साथ में। रूप रघुनाथ की लाइन में यदि होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। भजन करने से राजा जी की सेवा की आशा नहीं आएगी। उस समय में गोपी भाव का उदय होगा, कब भाव की अवस्था में, इसके पहले नहीं। यदि कोई करेगा तो वो अनर्थ होगा। तन्ना प्रसिद्ध भागवत में कहा गया, तन्ना प्रसिद्ध ब्रजनार्दन ते अंग्रिमूलम प्राप्ता विशिज बसती तदुपासनाशा तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्य। श्रीमद्भागवत 10:29-38 का, कृष्ण के पास में गोपियां आई, कैसे आई, जैसे कोई किसी का धन लेने के बाद उसके बाद पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुन करके आजगमु अन्नो अन्नम अलक्षितो दबा, कोई किसी को न देखे इसी रूप में बावरी होकर, देह और दैहिक सब कुछ विस्मित होकर उस ओर चल पड़ी जहां पर कि कृष्ण की वंशी ध्वनि आ रही। पहुंचने पर कृष्ण ने कहा, जी आप लोगों का स्वागत है, कैसे लिए आए। वन की शोभा देखने के लिए पूर्णचंद्र जमुना में प्रतिबिंबित हो रहा है, उसकी किरणें सारे वन प्रांत में सुशोभित हो रही हैं। मानो चंद्र ने अपनी प्रियतमा को गुलाल से भर दिया। ठीक, अब आप लोग पधारिए। उस समय में तरह तरह से युक्ति दिया, कृष्ण ने कहा जब अपने पतियों की सेवा करना कर्तव्य है, जैसा भी पति क्यों ना हो। और भी तरह तरह की युक्तियां दिया, तब गोपियां ये कह रही हैं आपका यह कहना उचित नहीं जान पड़ता। तन्ना प्रसिद्ध विजनार्दन त्यंग्रि मूल प्राप्त विशिज वसती स्तद उपासना। वैष्णव लोग इसका चिंतन करेंगे, कौन साधक, कौन साधक भाव भक्ति की को चाहने वाला व्यक्ति इन सब चीजों की अनुवृत्ति करके और इन भावों का चिंतन करेगा गोपियों को, और ऐसे ही करुण स्वर से भगवान को पुकारे, उन गोपियों को पुकारे, तब दास्य आशे। गृहस्थ लोग भी अपना घर बार का और सब कामों को निपटा करके या उनको रहते हुए भी आए हैं सुनने के, महिलाएं भी घर का काम इतना है तब उसको छोड़ करके सुनने के लिए, कोई कोई इसमें है विदेशी वो घर बार स्त्री पुरुष सब छोड़ करके यहाँ पर बैठी है भगवान का भजन कर रहे हैं। और भी यहाँ के लोगों में भी पति इत्यादि घर वाले प्रसन्न है तभी आ जाते, इसलिए हर बार छोड़ना सहज है, अनर्थों का छोड़ना सहज सहज नहीं है, फिर अनर्थों का बस छोड़ना भी सहज है, किंतु कृष्ण भक्ति का पाना बड़ा भारी दुर्लभ है। कृष्ण भक्ति का पाना भी सहज हो सकता है, किंतु भाव भक्ति सहस्त्र साधनों के द्वारा भी सहज सुलभ नहीं, प्रेम भक्ति की तो और बात। इसलिए हम लोग घर छोड़ करके आए, धाम में जगह भी मिल गई, वैष्णव का संग हुआ, बिना पैसे का इच्छा नहीं रहने पर भी जोर करके, जैसे जिस बछड़े के पेट में केंचुआ पड़ जाए और उनको नीम पत्ते का रस, धरका जानते हैं, धरका वो जानते हो तुम, जानता है घर का कहते हैं, बांस को काट करके उसका थोड़ा सा ऐसा कर देंगे और उसमें भर देंगे कोई चीज और जोर से उसका गला पकड़ करके ऊंचा मुंह करके और दे देते, और जब तक वो निकल नहीं जाएगा उसको निकालेंगे नहीं। नाय कहते हैं बहुत नाल ना नाय, खैर वही समझिए। इसलिए रघुनाथ दास जी कहते हैं जब भक्ति मैं पान नहीं करना चाहता था, विषय पान करना चाहता, और सनातन गोस्वामी जी माता पिता से भी अत्यंत करुणाशील, हमारे ऊपर में दयाशील, हमारे मुंह को पकड़ लिया जबरदस्ती और इच्छा नहीं रहने पर भी भक्ति रस का पान उस ढरके से उस नाल से जब तक नहीं पिएगा तब तक उसको पकड़े रहे। गुरु क्या करता है, शिष्य भाग जाता है, शिष्य भाग जाता है तभी वो कहते हैं अरे भाई तुम आ जा, तुम नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा, तरह तरह का प्रलोभन दे करके जैसे तैसे उनसे अन्य विनय करके भाई तुम नहीं रहेगा तो हमारा मठ ही नहीं चलेगा, ये भी कह देंगे। किंतु बात ये नहीं है, ये ढरका देना है। भक्ति यद्यपि सुस्वादु है तो अभी जिनका मुख बिगड़ गया है, स्वभाव बिगड़ गया है, उनके लिए ये कड़वी लगती है भक्ति। कृष्ण नाम क्या है, मधुर होने पर भी सीताप विद्या पितौ पुतप्त रसनस्य अनुरुचिका, उसी दल में हम लोग हैं और उस दल का अगुआ मैं हूं। अगुआ मैंने क्या, मैं आप लोगों का सेनापति, इस विषय में रुचि ही नहीं है। हरिनाम जब करने का समय आएगा तो लाखों प्रकार के कर्तव्य आ जाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, कर्तव्य जाने कौन दे दिया, घर बार छोड़ करके स्त्री पुत्र को तो आ गया, भाई बंधु पिता माता को, और असल कर्तव्य से भी मुख करके विषयों को ही अपना मान लेते हैं, इधर उधर का भजन में मन नहीं लगता। गुरु वैष्णव जैसे तैसे, ये भी गुरु प्रतिज्ञा करता है कि भाई इस जन्म में दूसरे जन्म में भी मर, तुम मरने पर कहीं जाने पर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, तुम सांप होकर के आएगा मरने के बाद में ना, तो नारद जी वहां पर पहुंच जाएंगे, अरे बेटा अब तो सांप हो गया, अब तो भजन कर। एक महा लोभी विषयी व्यक्ति था जो 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया, तो उसके 4-5 लड़के थे। नारद जी बोले जैसे विषय में तो सारा जीवन लगाया, 80 वर्ष की उम्र हो गई, अब तू भजन कर। मैंने कहा जी थक जाइए, मैं भजन करने का संकल्प कर चुका हूं, हमारे लड़के अबोध हैं, ये कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए थोड़ा सा और जरा ठीक हो जाए, इनका शादी उदी करा करके बच्चे हो जाएंगे तो फिर आ जाए। तो जब उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए सब, तो वो एक दिन आए नारद जी, कहा जी भाई वो आदमी कैलाश कहाँ गया? कैलाश? अरे वो तो हमारे पिताजी थे, वो मर गए। या नाती बोला जी हमारे वो दादाजी थे, वो मर गए। मर गए? अच्छा। उन्होंने कहा जी कहीं गया नहीं होगा, यही पर पास ढूंढते ढूंढते वहां पर एक कुत्ता मिला, कि गैया गाय नहीं बैल, बैल मिला उसके पास में। अरे कैलाश तू बैल होकर के आया, तो क्या करूं गुरु जी, भजन की इच्छा थी किंतु ये समझते नहीं, इसलिए बैल करके होकर के आज इसकी खेती हमारी बहुत बड़ी है, तो मैं बैल होकर के ये खा चास उसको करवाऊंगा, नहीं तो जो ये भूखों मरेंगे। ठीक, कब भजन करेगा? अब आप इस बार आएंगे ना तो मैं भजन करूंगा, थोड़ा सा और व्यवस्था करूंगा। कुछ दिन के बाद मैं तो कह रहे बैल कहाँ गया, तो मर गया, जैसे ही कहीं ना कहीं होगा। देखा जैसे कुत्ता एक था, अरे कैलाश तू कुत्ता हो गया? गुरुजी क्या करूं, ये समझ में नहीं आता, दिन में रात में चोरी हो जाएगी और ये लोग सोए रहते हैं, इसलिए कुत्ता होकर के पहरा दे रहा। कहा जी आप भजन करेगा? अभी थोड़ी देर ठहर जाइए और जरा बड़े हो जाए। तो ठीक, फिर आया नारद जी, तो देखा जैसे वो पूछा जी कुत्ता मर गया? तो कहा जैसे कहाँ गया वो? तो मर गया। अच्छा, खोजते खोजते देखा एक गड्ढे में एक सांप पड़ा हुआ विषधर। कहा जी यहीं पर तो हमारा रुपया गड़ा हुआ था, इसी की रक्षा कर रहा हूँ, ये लोग समझते नहीं है, कोई चोरी कर ले जाए। अच्छा भजन कब करेगा? अब जब आएंगे तो देखेंगे। ने कहा जी ठीक है, उनके बच्चे सुखा दिया जी, देखो तुम्हारे घर में सांप है, जान से मत मारना, थोड़ा सा ऐसा मारना कि गोटी टूट जाए और चल न सके, और उसको फेंक देना जंगल में। बस उन्हीं का वो नाती पड़पोती और क्या क्या होंगे वो सब लोग आकर के देखा जी सांप विषधर, किसी और आदमियों को बुला लिया, उसे मारपीट करके उसका थोड़ा सा ये तोड़ दिया और जीवित रहा, उसको लेकर के बाहर जंगल में फेंक आए। कहा जी उसको जलाना मत, वो जलाए नहीं। इसके बाद में नारद जी, अरे कैलाश अब तो तुम्हारी कमर भी टूट गई, अब भजन करेगा? हाँ हाँ, जिसके लिए मैंने इतना किया कुछ नहीं भजन किया, तो अब किसके लिए? अब प्रभु भजन करेंगे, आप कृपा करो, तो जाओ अब तुम भजन करो। तो सांप जो नहीं छोड़ करके कोई भक्त होकर के भजन करो, ऐसे हमारी गति है, मरने के बाद भी कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए भजन अभी से करो ठीक से, जैसे इसमें नहीं आना पड़े। क्या कर रहा था? हाँ, तो हम घरे इसी का कर रहा था, पादई का मूला दासान दासो भविताश में भूय, तन्ना प्रसिद्ध। अच्छा, तो तब दास्य आशे छड़िया छी घर बार, हम लोग तो जाने और न जाने किसी कारण से किसी की स्त्री मर गई होगा, भाग करके चला गया, किसी को घर में खाने पीने चूहे नहीं जाते होंगे इसलिए चला आया होगा। कोई कोई जिसके वैष्णव का संग हुआ उसने कहा, और बच्चों के बुद्धि पर वो लग गई बात, वो भी घर में छोड़ करके चला आया, इसके पूर्व जन्म की कोई सुकृति होगी वो भी चला आया, जैसे तैसे हम लोग इसलिए छोड़ करके आए हैं, इसलिए दया करी देह कृष्ण चरण तुम्हार, हे कृष्ण पाद आप हमको अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। तब हास्य मुख निरीक्षण कामी जने तुम्हार कैंकर देह प्रफुल्ल वदने, तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मना, गोपियां कह रही हैं। हम यहाँ पर आई अपने घर बार को छोड़ दिया, अपनी बस्ती को छोड़ दिया, देह दैत सब को छोड़ करके हम आई हैं, घर लौटने के लिए हम नहीं है। आपका यह सुंदर जो मुखारविंद है, सुंदर श्री अंग है, जिसको देख करके हमारे अंदर में तीव्र काम माने सेवा की वासना, प्रेम भाव से सेवा करने की लालसा जग उठी है। इसलिए तत्तना पुरुष भूषण दे ही दास्यम, अपनी आत्मत्मों की सेवा हमें प्रदान की। हम लोग जब भजन करेंगे, हरिनाम करेंगे, तो ये श्लोक भी ऐसा ही है, उन्हीं के बात को हम दोहरा रहे हैं, अपने चरणों की सेवा जैसे गोपियां मानते हैं। यदि गोपियों की बात को दोहराते हुए हम हरिनाम करते हुए ये करेंगे, तो गोपियों का भाव धीरे धीरे हमारे हृदय में उठने लग जाएगा। विक्षाल का व्रत मुखम तब कुंडल श्री गंडल स्थलाधरम सुधम हर्षितावलोकम दत्ताभयंच भुज दंड जुगम विलोक्य बक्षा श्रिय कर्मणंच भवामि दास्य। गोपियां उसके बाद में फिर कह रहे हैं, दीक्षा आपके काली कली अलका को, केश कलाप को देखकर, तब कुंडल श्री गंड स्थल, आपके सुंदर गंड स्थल में कुंडल झलक रहे हैं, हिल रहे हैं, दो दुल्यमान, और उसमें स्मित हास्य आपका अद्भुत, दत्ता भयंच, और आपके भुजंड दंड कैसे है, समस्त भक्तों को अभय प्रदान करने वाले। ये दो प्रकार का, एक संसारी विपत्तियों से और दूसरा विरह की तीव्र आग से भी बचाने के लिए अभय, ये दो प्रकार का अभय दान करने वाले, इनको देख करके बक्षा श्री यही कर्मणंच भवाम्यदास, जिसके चरणों में सब समय लक्ष्मी जी पलोटती रहती हैं, सेवा करती रहती हैं, बच्चा सर्व रह करके उनकी सेवा करती हैं, हम उनकी दासी होना चाहती हैं। ये उसका अंतिम श्लोक अक्रूजिक है, वो क्या है, जब उद्धव जी आए थे, हाँ अभिवत मधुपार्जे मधुपुरजे आर्य पुत्राधुनास्ते स्मर्त पितृगेहान बंधु सम बंधुश्च गोपान कथमपि कहते हैं, वो गोपियां पूछ रही हैं उस भ्रमर से, भ्रमर नहीं समझ करके कृष्ण का दूध समझ करके पूछे, अपिवत मधुपुरजा आर्य पुत्रो धुनास्ते, क्या कृष्ण कठोर गुरु के शासित गृह से शिक्षा समाप्त कर मथुरा में आ गए हैं? जब आ गए हैं तो क्या वो यहां के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, रास्ते में होंगे, ये हम लोगों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं? यदि नहीं आ रहे हो तो स्मृति से पितृ गए हैं, अपने पिता के घर को याद स्मरण करते हैं, जो इसमें हम खेले कूदे, लोगों ने कितना प्यार किया, और उस घर में अब रसोई नहीं बन रही, बर्तन औंधे पड़े हैं, भ्रमरों का जाल घर में लगा हुआ है, मैया कैसी हो गई है, पिताजी कैसे हो गए हैं, हमारे सखा लोग कैसे हैं, स्मर्त से पितृ गेहान बंधु समस्त गोपान, गो अपने सखाओं को याद करते हैं, कथमपि क्या कभी भूल से भी जानबूझ करके भी हमारा स्मरण करते हैं, किस रूप में, कथमपि किं क्रीणाम गृणी थे कहते हैं कि क्या कभी वो पूछते हैं, गोपियां गांव की ग्रामीण महिलाएं, वो ऐसी माला गुथ नहीं सकती जैसे तुम लोग गुथती हो मथुरा की, अथवा ये कहते हैं कि तुमको गुथ नहीं आता, गोपियां कैसी सुंदर माला गुथती थी, कैसे गदी मंथन करती थी, कैसे मक्खन बनाती थी, कैसी सेवा करती थी, किसी रूप में तुच्छ ताचिल्य के रूप में या प्रतीक रूप में किसी रूप में हमारा स्मरण करते हैं, क्या वो भुजग 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 अगरु सुगंधम मूर्धन साथ, वो अभय भक्तों को अभय देने वाले उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं जिनमें सुगंध लगा हुआ है, उसे तरह तरह की सुगंध आ रही है, और क्या हमारे सिर पर देने के लिए, अभय देने के लिए क्या वो पधार रहे हैं, कब लौटेंगे, और यही कहते कहते बस मूर्छित होकर के भजन करते समय ऐसा साधक गोपियों के इन भावों को स्मरण करता हुआ हरे कृष्ण आंखों में दर दर करके नेत्र से अश्रु, ये सब है भजन हरा गाने का। वैदिक भक्ति क्या, एक पैर मार दिया, पुष्प कृष्ण के चरणों में फेंक दिया, बस हो गया, और वहां का जो प्रसाद जो राबड़ी वाला था रसगुल्ला वो तो अपने लिए खा लिया या रख दिया, और केले केले या और जो छह थे वो बाहर कर दिया, भक्तों में बांट दिया, ये अर्चन हम करें, इससे अधिक क्या कर सकते हैं। देखा जी हमको अर्चन करने में कष्ट होता है, सुनो भाई तुम लोग अच्छी तरह से, यदि देखता है जैसे भाई वहां पर बैठे हुए हैं तो हमको गर्मी लगती है, इसलिए पंखा चला दिया जाए, पंखा तो चलने लगा, अर्चन कर लिया, इतने बाद में बिजली गुल हो गई, तो अब वो पंखा लेकर के ठाकुर जी को सेवा क्यों नहीं करता, यदि अपने ने नहीं कर रहा है तो जब बिजली चली जाती है ये तब माना जाता है कि ये पंखा जो चल रहा था वो किसके लिए चल रहा था, यदि ठाकुर जी के लिए पंखा वो चल रहा था सचमुच में तो पंखा बंद हो गया तो हमको क्या करना चाहिए, खुद लेकर के ठाकुर जी का पंखा कर, तब तो समझो जैसे ये हृदय से ये भगवान की सेवा है, ऐसे ही सब चीजों को समझो तब तो ठीक है, और नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए श्लोकों के साथ साथ में इस प्रकार से भजन करते हुए अनुभव करते हुए भजन करो, अनुवृत्ति के साथ में और अनुबंध के साथ में, निर्बंध के साथ में। कुर्वन्त हि त्वयि रतिं कुशलास्मात्मन नित्य प्रिय पति सुदार्थ आतिदयि किं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्य आसाधितं त्वयि चिरादर अरविन्द नेत्र। यहां पर भक्त विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं ऊपर में ये स्थले यहाँ पर पार्थिव भावों का उत्कर्ष दिखला रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, भक्त इनका श्लोक का उच्चारण करता हुआ और ऐसे ही उसमें क्या करेगा, कुर्वन्त ही त्वयि रतिम कुशलाश्मा नित्य प्रिया प्रिये पति सुतादि भी आर्ति दैहकिन तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास मछिंद कुर्वन्त ही त्वयि रति कुशला, जो कुशल व्यक्ति हैं, कुशल साधक है या कुशल व्यक्ति है वो आपके चरणों में रुचि करते हैं आत्मा के द्वारा, रति रति माने यहां पर समझ लो प्रेम के बाद में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग की इसको, और साधकों में ले लो जिसको रति उत्पन्न है उसके लिए रति मान लो, और उसके नीचे वाले हैं उसमें साधारण उसमें श्रद्धा समझे, किंतु श्रद्धा का तात्पर्य नहीं यहां पर रति का ही है। तो जो कुशल व्यक्ति हैं भजन कुशल वे आत्मा के जो नित्य प्रिय जो हैं कौन है, कृष्ण स्वयं है आप हैं, किंतु इसको समझ नहीं कर करके जो संसारिक पति सुतादि भी आर्ति दैहकिम जो अपने पति को अपने पुत्र को अपने पारिवारिक जनों में ही आसक्त हैं वो इस चीज को नहीं समझेंगे, वो उसके लिए आरती देंगे अंत में। रुक्मिणी जी ने कहा, कहीं कहा है, रुक्मिणी जी बतला रही हैं, कृष्ण से संदेश भेज रही हैं, ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण को संदेश भेज रही हैं, मैंने अपना यह शरीर मन आत्मा सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर कर दिया। हमने नाथ प्रमुख व्यक्तियों से भक्तों से आपका गुणावली आपकी कृपा आपकी महिमा हमने सुन रखी है, इसलिए आप दूसरे के प्रति हमारा चित्त नहीं जाएगा, इसलिए आप ही हमारे प्राण प्रियतम हैं, ऐसा समझ करके जल्दी से आप आए। मेरे विवाह होने के पहले ही, और नहीं तो मैं प्राण को छोड़ दूंगी। पति कौन है यथार्थ में? जिन स्त्रियों ने अपने पति के लिए सर्वस्व त्याग किया है, जैसे अरुंधति देवी, किसकी किसकी स्त्री है, अनुसुईया जी अत्रि की, अरुंधति वशिष्ठ की, और नल दमयंती नल की, ये सब पतिव्रता स्त्रियां हैं, ये सब पतिव्रता स्त्री कर रुक्मिणी कहते ये पतिव्रता स्त्री नहीं है, जिन्होंने हाड़ मांस श्याम के शरीर को ही अपना पति बना रखा है। यथार्थ में यदि वो पति है, प माने पालन पोषण का, त माने त्राण करने वाला, जो मृत्यु से भी त्राण कर दे, ये पति कर देते हैं। स्त्री के पहले ही चल बसे, अब क्या उसको करेंगे, नहीं कुछ कर सकते, ये यथार्थ पति नहीं है। हाड़ मांस के थाला ये पति नहीं है, ये पति पालन नहीं कर सकते, इनको ही पति मान करके इस शरीर को जो स्त्रियां उनके पति पद धर्म का पालन करती हैं, तो स्वर्ग इत्यादि तक तो जो नश्वर चीजें हैं वो तो प्राप्त कर लेंगी, किंतु यथार्थ में पतिव्रता नहीं है, क्योंकि उनके पति उनको नहीं पालन पोषण कर सकते हैं। किंतु आप ही हमारे यथार्थ पति हैं, आप ही हमारे प्रियतम हैं, हमने आपके चरणों में अपने को सौंपा है। आपके अतिरिक्त वो रमणियां धन्य है, उनका जीवन व्यर्थ गया जिन्होंने अपने हाड़ मांस को ही अपना पति समझा। वो तो आरती देने वाले, आरती माने दुख और कष्ट को देने वाले, मर जाएंगे हाय 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 करेंगे, अतः जीवित रहते हैं कितने प्रकार के कष्ट देंगे, अपने आप बीमार से तभी आरती देने वाले, इसलिए वो लोग यथार्थ पति नहीं है। किंतु हाँ एक बात है, उस अवस्था में यदि अपने पति की सेवा करते हुए कृष्ण को ही प्रियतम समझा जाए तो ये जथा ठीक, जैसे तारा अहिल्या मंदोदरी कुंती द्रौपदी, इनके पति रहते हुए भी उनको पति नहीं जान करके कृष्ण को ही पति और सर्वस्व ज्ञान किया कि ये पतिव्रता है। इसलिए जो कुशल व्यक्ति हैं, भजन कुशल आत्म तत्व को जानने वाले, आपके चरणों में ही आपको नित्य प्रिय समझ करके उनके चरणों आपके चरणों में समर्पण कर तन्ना प्रसिद्ध। इसलिए हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं, पालन पोषण करने वाले, जगत का पालन पोषण करते हैं, मैं भी उनमें एक हूं, मांस मच्छिंद हमें हमारा जो स्नेह आपके प्रति है इसको मत काटिए। आशांधिता तो बहुत दिनों से हमने ऐसा आशा रख करके आपके चरणों में आई है, उपासना आशा आपके चरणों की सेवा प्राप्त होने के लिए, इसलिए हमारे इस आशा को आप काटिए मत। तुआ भिन्न आत्मानित्य रति रभाजन आरती दाता पति पुत्रे रति आकार बड़ा आशा करी आईनु तुम्हार चरण कमल नहीं प्रसन्न हो गया। अब एक श्लोक पढ़ करके बस छोड़ दिया। राधा पदाश्रय कर्तव्यता, जीवों के लिए सबसे श्रेष्ठ अंतिम चरम प्रयोजन क्या है, राधा जी की दासता, राधा पदाश्रय उसके लिए कर रहे हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी गोस्वामियों के वाक्य को कर रहे हैं, अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित बिंदाटवी तत्पदांगम असंभाष तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। जिन्होंने श्रीमती राधिका जी के चरणों की पदधूलि की सेवा नहीं की, कौन वृंदावन के चरण की धूलि जो सेवा करने में उनकी सेवा नहीं की, या उनकी धूलि की सेवा नहीं कभी की, और जहां पर उनके चरण पड़ते थे चरण की धूलि है उस वृंदावन की आराधना नहीं की, उसका आश्रय नहीं किया, असंभाष तद्भाव गंभीर चित्ता, और राधा जी के भावों को, गंभीर भावों को जिसने स्पर्श नहीं किया ऐसे संतों, स्पर्श किया है ऐसे संतों से संग नहीं किया, कुता श्याम सिंधु रसस्यापगा, तो कैसे श्याम सिंधु, श्याम सिंधु माने श्याम के प्रति जो प्रेम का जो समुद्र है, जो गोपियों के हृदय में है, राधा जी के हृदय में है, कैसे उसमें अवगाहन कर सकता है कभी सुनता। जहां पर राधा जी की चरण धूली, दूसरा वृंदावन जहां पर थे उनके चरण चलते थे वो, और उनके जो भक्त हैं जो राधा जी के आश्रय छोड़कर का खुशी नहीं लेते, इन तीनों व्यक्तियों के संग के बिना कभी भी राधा जी की दर्शन नहीं मिलेगा। ये चीज पूछना।